समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू टुडेज परिक्रमा। Akashita, we are in the third week of the month of March, and usually it is considered a transition month in many regions, particularly in our country. This month marks the beginning of summer, bringing warmer days in recent years, and this warming has become more intense. But of course, this time, after a few initial days of intense heat, the weather has taken a drastic change. And if we talk about Delhi, the city sweltered through its hottest first week of March, breaking the record of the earliest it had crossed the 35 degree Celsius threshold. And what a sudden change in the weather since last few days. The capital continues to enjoy winter-like conditions, as yet another day of rain and overcast skies pulled the maximum temperature in the city and across many places in northern India further down to 21.7 degrees, which is 10 notches below normal and the lowest for March in 6 years.
जी हाँ, तो हम enjoy भी कर रहे हैं काफी, क्योंकि एकदम ठंड का मौसम बना हुआ है, किसी hill station से दिल्ली कम नहीं बना हुआ है।
In fact, lot many times I thought I should have not packed up my woolen clothes.
Right.
Enjoy the weather till the temperature starts rising again, leading to uncomfortable hot days in the coming months. So Akarshita, now shall we begin with some news headlines at this hour?
जी.
Prime Minister Narendra Modi says there is no energy security crisis in India despite the ongoing West Asia conflict.
पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज, अमेरिका, इजराइल और ईरान के हमले और बढ़े।
लोकसभा रेफर्स कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी।
राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
And at National Para Athletics Championships in Bhubaneswar, Kipa Mero of Arunachal Pradesh wins gold in women's javelin F12. And as always, Akarshita, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Shaheed Divas and also World Water Day Conclave. So today we come together to remember and honor three brave sons of India as the nation is paying homage to the great freedom fighters Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev on their martyrdom day today. On this day in 1931, British rulers had executed them in Lahore for their revolutionary activities against the empire. Their courage, sacrifice and undying love for the nation continue to inspire generations even today.
ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे।
आज तारीख है 23 मार्च। कैलेंडर पर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हवाओं में इनकलाब की गूंज सुनाई दी। आज पूरा देश स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को नमन कर रहा है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। साल 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। अंग्रेज हुकूमत इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने तय वक्त से 11 घंटे पहले ही इन वीरों को फांसी देने का फैसला किया। भगत सिंह महज 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए, पर उनके विचार और आदर्श उनकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व थे।
कहते भी गए, कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने।
आज की कड़ी में हम शहीद दिवस और स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी।
तू न रोना के तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं।
तीनों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी।
1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया।
इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके।
दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली।
इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में फांसी दे दी।
जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं।
ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय के दिल में जीवित हैं। आकाशवाणी की तरफ से इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि।
A state-level program is being held in the ancestral village of Shahid Bhagat Singh at Khatkar Kalan to remember the supreme sacrifice of these sons of the soil for the nation. We have more on this from our correspondent.
Ae vatan, ae vatan, humko teri kasam, teri raahon mein jaan tak luta jayenge.
The Britishers, after hanging Shaheed Azam Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, a day before the scheduled date, secretly brought their bodies to the bank of the river Satluj at Husainiwala in Firozpur and unceremoniously cremated them. A National Martyrs Memorial here depicts their irrepressible revolutionary spirit. Border Security Force Punjab and its unique initiative as part of its Diamond Jubilee celebrations organized Firozpur Husainiwala Border Marathon here yesterday to honor the supreme sacrifice of the legend. Firozpur Railway Division has started 6 pairs of special Shahidi Mela trains today to ferry the visitors from Firozpur Kent to Husainiwala and back. People are visiting the memorial to pay tributes to the martyrs. A state-level program will be held at the ancestral village of Shahid Bhagat Singh at Khatkad Kana to remember the supreme sacrifice of these sons of the soil for the nation. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि इन नौजवानों में इतना साहस कहाँ से आया होगा। श्रोताओं, भगत सिंह कहते थे कि वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने जेल में 116 दिनों की भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों को सम्मान मिल सके। राजगुरु और सुखदेव ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनकी दोस्ती और शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और एकजुट किया।
Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and other leaders have paid tributes to the legendary freedom fighters. Lok Sabha and Rajya Sabha also paid tributes to Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan said their martyrdom was not merely an episode in the history of the country's freedom movement, but it was a defining moment that awakened the conscience of the nation and inspired millions to rise in unity against the colonial rule.
On this solemn occasion, let us reaffirm our resolve to uphold the constitutional values and democratic principles for which these martyrs stood and to work unitedly for a strong, inclusive and progressive India. I request the honourable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the immortal memory of Sardar Bhagat Singh Ji, Rajguru Ji and Sukhdev Ji.
Paying homage to these martyrs, Lok Sabha Speaker Om Birla said the immortal saga of their bravery continues to inspire the country's youth and the entire nation.
हमारे इन महान शहीदों की वीरता की अमर गाथा हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा की स्रोत रही है। हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं।
On this Shaheed Divas, we salute the indomitable spirit of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Their legacy lives on in our thoughts, our actions and our dreams for a better India.
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला।
And moving on to the others Dateline topic, we have World Water Day Conclave 2026. The inaugural session of the World Water Day Conclave this year is being held in New Delhi today. The conclave highlights the growing convergence of departments, academia and industry towards strengthening India's water security through a whole of government and whole of society approach. Recognizing water as a vital national resource and the primary role of states, union territories in its management, they have been encouraged to organize suitable activities to mark the occasion. Such initiatives can enhance public awareness, promote community participation and also encourage responsible water use.
ये सम्मेलन सतत जल प्रबंधन के लिए संवाद, नवाचार और सहयोग हेतु एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसमें नीति निर्माता, उद्योगपति, शिक्षाविद, स्टार्टअप्स, लघु और मध्यम उद्यम और युवा नवोन्मेषक एक साथ आकर व्यापक और प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का सह निर्माण करेंगे। जल उपयोग दक्षता, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और नवाचार के प्रमुख चालक के रूप में उद्योग को स्थापित करते हुए यह सम्मेलन एक ऐसे प्रतिमान परिवर्तन को उजागर करता है जहां उद्योग जल उपयोगकर्ताओं से जल संरक्षकों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अधिक स्मार्ट और टिकाऊ पद्धतियों को अपना रहे हैं। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के 700 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
And through this multi-stakeholder engagement, the conclave embodies the spirit of ideas, innovation, action, aiming to catalyze partnerships, innovation, and policy convergence where innovation meets responsibility to build a water-secure and resilient India. Union Minister of Jal Shakti, C.R. Patil, today said that over 16 crore homes have been provided accessibility to tap water under the Jal Jeevan Mission. The minister said this while addressing the inaugural session of World Water Day Conclave 2026 in New Delhi. Mr. Patil lauded initiatives like Namami Gange Mission and reaffirmed government's commitment of cleaning river water. The minister further urged the citizens to adopt the practice of conserving and storing water.
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, जल जीवन मिशन हो, रिवर लिंकिंग हो, जल संचय जन भागीदारी की बात हो, ये सभी के ऊपर हमने उनके साथ डिटेल में चर्चा किया। मुझे विश्वास है कि जो लोग पहले से ही जल संचय के लिए काम कर रहे हैं, रीयूज के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करने में हमें भी आनंद आया और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो सफल करने में इनका सहयोग मिलेगा।
इस अवसर पर श्री पाटिल ने जल क्षेत्र में नवीन और प्रभावशाली समाधानों को मान्यता देते हुए जल शक्ति हैकाथॉन विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री वी सुमन्ना, राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में चार विषयगत सत्र और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इनके विषय होंगे उद्योग आधारित जल दक्षता, एआई और आईटी सक्षम स्मार्ट निगरानी प्रणाली और चक्रीय जल उपयोग।
And also glacier systems and climate resilience with a focus on Himalayan glaciers as critical water towers. Also the use of cases of water census data for planning and policy. The industry for water session will culminate in a joint industry declaration, reaffirming industry commitment towards sustainable water stewardship. And in our bilingual live phone-in program Public Speak today, we will bring an insightful discussion on significance of water conservation in ensuring sustainable future supplies. And during the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-233-10481 or 011-2371-7117 or 011-233-1444 from 9:30 p.m. onwards today. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। उत्तर प्रदेश स्थित श्रावस्ती देश प्रदेश का ही नहीं बल्कि विश्व में बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यही कारण है कि श्रावस्ती में श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, चीन और जापान सहित कई देशों से बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटक आते रहते हैं। इसी क्रम में श्रावस्ती में बुद्ध वनम पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बुद्ध वनम पार्क का निर्माण कार्य इस वर्ष जून के अंत तक पूरा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
पार्क के लैंडस्केप क्षेत्र में कई प्रमुख संरचनाओं का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परियोजना के अंतर्गत धर्मचक्र से संबंधित 8 संरचनाओं के आरसीसी फाउंडेशन का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही म्यूरल वॉल के लिए भी आरसीसी स्ट्रक्चर बन चुका है। इस पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। परिसर में बनाए जा रहे सेंटर पाथवे और स्टेप गैलरी के लिए ब्रिक वर्क का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। इससे पार्क का मुख्य संरचनात्मक स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। पार्क के आसपास स्ट्रीट ब्यूटिफिकेशन के तहत सड़क के दोनों किनारों पर आरसीसी रिटेनिंग वॉल का निर्माण, केवल ट्रेंच, स्टोन बोलार्ड, विशेष लैंप पोस्ट और पाथवे पर स्टोन क्लैडिंग जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। बुद्धवनम पार्क में आने वाले पर्यटकों को बौद्ध धर्म और क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे इंटरप्रिटेशन सेंटर के कॉलम ढलाई का कार्य भी प्रगति पर है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इन व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र की सुंदरता और पर्यटन अनुभव में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस परियोजना के पूरा होने से प्रदेश में बौद्ध पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये पार्क राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित होगा। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Taking you all to Ladakh now, where the government agencies have launched Mission Mode Cleanliness and Beautification Drive to transform the Leh city into world-class tourist city in the country. Our Leh correspondent has filed this report.
In Leh city of Ladakh, a comprehensive cleanliness and urban greenery improvement drive has been launched with renewed commitment. This initiative, which is in mission mode, is being taken in pursuance of the direction of Lieutenant Governor V.K. Saxena. This renewed initiative being taken to transform Leh city into one of the cleanest, most organized and tourist-friendly cities in the country. Acting in the mission mode, the concerned government agencies have commenced large-scale operations to remove accumulated dust, construction and demolition waste lying along roadsides across key areas of the city. The initial phase of the drive has focused on prominent locations including Lok Nivas, the Secretariat, Jivetal and adjoining areas. Not only this, the agencies simultaneously have started preparatory work for the extensive plantation drive in the next month. Pits being dragged along the stretches to enhance the green cover and aesthetic appeal of the city. This integrated approach is designed not only to improve sanitation but also to contribute to environmental sustainability and urban beautification. Lieutenant Governor V.K. Saxena, who is personally monitoring the progress of the work, has expressed satisfaction over the effort being made by the government agencies. UT administration has also urged citizens, local stakeholders and visitors to actively support and participate in this initiative, ensuring its long-term success and sustainability. Yangchen Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
अब सिलीगुड़ी में भी खुलने जा रहा है निशानेबाजी प्रशिक्षण एकेडमी। पद्मश्री पुरस्कार विजेता भारतीय सेना के पूर्व कप्तान तथा ओलंपिक्स खिलाड़ी जीतू राय की देखरेख में ये एकेडमी शुरू होने जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय सेना के भूतपूर्व कप्तान श्री जीतू राय द्वारा आगामी 26 मार्च श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर सिलीगुड़ी के निकट उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के पास जीतू राय निशानेबाजी अकादमी का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अकादमी द्वारा पश्चिम बंगाल, सिक्किम व पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों के आकांक्षी निशानेबाजों को निशानेबाजी का उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इलाके में निशानेबाजी के क्षेत्र में एक नए युग का उदय होगा, ऐसा माना जा रहा है। जीतू राय स्वयं एक नेपाली भाषी गोरखा हैं तथा खेल के क्षेत्र में यहाँ के बच्चों व युवाओं में एक जोश व प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। फुटबॉल में भाईचुंग भुटिया, सुनील छेत्री, हॉकी में भरत छेत्री, निशानेबाजी में जीतू राय आदि ने देश दुनिया में भारत का मान गौरव दोनों बढ़ाया है। अब इस क्षेत्र में जीतू राय निशानेबाजी अकादमी खोलने से केवल इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल व भूटान के युवाओं को भी निशानेबाजी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग।
And now going to Goa. Goa has secured the third position in power distribution performance at the Bharat Electricity Summit held in New Delhi. We have more on this from our correspondent.
The ranking is based on the distributed utilities rating for 2024-25, which assesses DISCOMs on financial and operational efficiency along with consumer service standards. State Power Minister Sudhin Dhavrikar represented Goa at the summit and highlighted key achievements including low aggregate technical and commercial losses and major progress in underground cabling. He said the next focus will be full automation of the power network using advanced systems. Dhavrikar credited the achievement to systematic planning and and ongoing infrastructure upgrades under Chief Minister Dr. Pramod Sawant. He noted improvements in power quality, reliability and consumer satisfaction. Goa also shared its perspective on renewable energy challenges for smaller states during a ministerial session chaired by Union Power Minister Manohar Lal Khattar. For Parikrama, Mahesh Chopade, Panji.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल अनुजा से.
Right, so in chess, Indian Grandmaster Koneru Hampi has decided to withdraw from the upcoming FIDE Women's Candidates Tournament, citing personal safety and well-being as her primary concern amid the ongoing West Asia conflict. The FIDE Women's Candidates Tournament begins on 28th of March in Cyprus and will run till the 16th of April.
अरुणाचल की पैरा एथलीट किपा मेरो ने ओडिशा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला भाला फेंक F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. वहीं तेची मेटा ने महिला 400 मीटर T13 वर्ग में रजत पदक जीता.
And if we talk about the Khelo India Tribal Games, Chhattisgarh is set to host the Khelo India Tribal Games 2026 from 25th of March to 3rd of April. The event will take place across three cities, Raipur, Jagdalpur and Surguja, bringing together over 6,000 participants, including 2,300 athletes. And if we talk about the business of the day, benchmark domestic equity indices plunged around 2.5% today amid a broad-based sell-off. The Sensex nosedived 1,837 points or 2.46% to close at 72,696, while the Nifty tumbled 602 points or 2.6% to settle at 22,513. For more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
जागो जवानो देश पुकार खून में अड़ो रवानी मुल्क मता जह जान दिनी सा याद कयो कुर्बानी हेमू कालाणी हेमू कालाणी.
आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालाणी का भी स्मरण कर रहे हैं. उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है. बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया.
हेमू कालाणी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाईं. हेमू स्वराज सेना के नेता थे जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था.
हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया. उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है. हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़ कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी.
उणवीह सालन जे बालक जो जिगर हो जो शजवानी नर नारी जी हर जुबान थी बोले सत्य कहानी हेमू कालाणी.
इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया. हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया.
21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कालाणी हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े. महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन.
Moving on, we also pay respect to, deepest respects to the esteemed Nalini Baladevi, a pioneer figure in Assamese literature who is having her birth anniversary today. Her groundbreaking accomplishments, including being the first woman president of Assam Sahitya Sabha and a recipient of the Padma Shri in 1957 and Sahitya Academy Award for her poetry collection Alaknanda in 1968, left a priceless legacy in Assamese literature.
उन्हें उनकी रहस्यवादी और देशभक्तिपूर्ण कविताओं के लिए जाना जाता है. महज 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता पिता लिखी थी. उनकी प्रमुख काव्य संग्रह है संध्यार सुर, अलकनंदा, सोपुनार सुर, पोरोश मुनि और आज ही भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी राजनेता और सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती है। वे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और सप्त क्रांति के जनक माने जाते हैं। लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। लोहिया ने सात क्रांतियों का आह्वान किया, जिसमें नर नारी की समानता, रंगभेद, जातिवाद के खिलाफ, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता प्रमुख थी। उन्होंने चौखंबा राज अर्थात गांव, जिला, राज्य और केंद्र की अवधारणा दी और हिंदी को राजभाषा के रूप में समर्थन दिया। उन्होंने व्हील ऑफ हिस्ट्री जैसी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी।
And in the heart of Kolkata, just near the Gariahat crossing, stands a college bustling with young women from all over the city and beyond. Many of them rush through the gates every morning unaware that the name above them, Basanti Devi College, belongs to a woman who once shook colonial rule by simply walking the streets. Yes, I'm talking about Basanti Devi Haldar, who was an Indian independence activist during the British rule, and she took active part in various political and social movements and continued with social work post independence. She was awarded the Padma Vibhushan.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।